समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, बस दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आप संकल्प कर लें तो सभी चुनौतियों से पार पा सकते हैं। इसके साथ ही न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा के इस अंक में अभिवादन स्वीकार कीजिए सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा का।
Hello, good afternoon and welcome along listeners to Parikrama on 100.1 FM. I'm Shagun and with me today is my co-host Sarfirozi. And we have a lot in store for you. Let me introduce you let me introduce you to the sections of the program quickly. We have selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. And today, it's a day of celebration and remembrance, and we'll tell you how over the next 30 minutes, so be with us for the next half an hour. But first, we begin with the news headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs Niti Aayog's 9th Governing Council meeting, says states can play an active role to achieve the goal of Viksit Bharat at 2047.
भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज शाम दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी।
The Prime Minister to share his thoughts in the monthly radio program Mann Ki Baat tomorrow.
राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
In Paris Olympics, India begin the campaign on day one of the games in 7 events, including badminton and hockey.
वहीं 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत आज शाम मेजबान श्रीलंका के साथ पल्ले किले में खेलेगा।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we will talk about CRPF Raising Day. Well, the Central Reserve Police Force, CRPF, is the largest paramilitary force in India, playing a pivotal role in maintaining internal security. Its journey began on July 27 in the year 1939, when it was established as the Crown Representatives Police. Post-independence, it was renamed the Central Reserve Police Force in the year 1949. CRPF Raising Day is a tribute to the indomitable spirit of the force and its commitment to serving the nation. Well, their selfless dedication makes them true guardians of India.
भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधों पर है, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के पास है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने बॉर्डर पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई अहम लड़ाइयों में अपना योगदान दिया है। और आज देश में सीआरपीएफ दिवस मनाया जा रहा है, जो देश के इस सशस्त्र पुलिस बल के महत्व को दिखाता है।
And Sarfirozi, this day, the CRPF Raising Day, is a momentous occasion to honour the unwavering courage and dedication of the force in safeguarding the nation.
Ji.
It's a day to acknowledge their sacrifices and contributions to maintain peace and order across the whole country. The CRPF has been at the forefront of counter-insurgency operations, anti-terrorist activities and disaster management, demonstrating its commitment to the nation's welfare. And Prime Minister has extended greetings to Central Reserve Police Force personnel on the occasion of CRPF's Raising Day today. In a social media post, Prime Minister Modi said that CRPF's unwavering dedication and relentless service to the nation are truly commendable. He added they have always stood for the highest standards of courage and commitment, and their role in keeping the nation safe is also paramount.
वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी जवानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अपने शौर्य से सीआरपीएफ ने न सिर्फ देश की सुरक्षा को अक्षुण रखने में अद्वितीय योगदान दिया है, बल्कि वीरता का एक गौरवशाली इतिहास भी बनाया है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
Well, the CRPF has been deployed in various parts of the countries, including the Kashmir Valley, the Northeast and the Naxal-affected areas. The CRPF has also been involved in counter-insurgency operations and has played a key role in the fight against terrorism.
सीआरपीएफ सेवा और बलिदान के लिए हर वक्त तैयार एक अत्यधिक पेशेवर बल है। इस बल ने अपनी बहादुरी और समर्पण के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं।
नाउ टॉकिंग अबाउट द वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द सीआरपीएफ हैज, दे हैव वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, आर वी टॉकिंग अबाउट इट, ऑल्सो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड वीआईपी सिक्योरिटी।
और शगुन, सीआरपीएफ की बहुत बड़ी जिम्मेदारियों में से एक कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी है। देश के भीतर कई बार कई कारणों से आंतरिक अशांति पैदा हो जाती है, जैसे आतंकवाद, नक्सल गतिविधियां, दंगे आदि, इनसे निपटना सीआरपीएफ की जिम्मेदारी होती है। और इसके अलावा शगुन, आपने अभी सुना होगा कि देश में कई जगह बारिश के कारण बाढ़ की भी स्थिति हो गई है, और जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी इस बल की कई टीमों को तैनात किया गया है। तो सीआरपीएफ की एक जिम्मेदारी है आपदा प्रबंधन करना, इसके अलावा सीमा की रखवाली करना और नागरिक प्रशासन में सहायता देना।
एंड ऑल्सो सर फिरोजी, सीआरपीएफ डे सेलिब्रेटेड विद फर्वर अक्रॉस द कंट्री। द फोर्स ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज वेरियस इवेंट्स इंक्लूडिंग परेड्स, cultural programs and award ceremonies to recognize the exceptional service of its personnel. It's also a day to remember the brave martyrs who laid down their lives for the nation. And on this distinguished occasion of July 27, 2024, we extend heartfelt congratulations to the Central Reserve Police Force, CRPF, on its 86th Raising Day. This day is a tribute to the force's unparalleled contributions in safeguarding the unity, integrity and sovereignty of our nation. Let's honor and appreciate the dedication and sacrifices made by the CRPF, exemplifying their commitment to the security and well-being of our country.
और अब शगुन, अपने श्रोताओं को ले चलते हैं क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि उनके पास क्या कुछ खास है।
Well, yes, the Hirakud Dam will discharge this season's first flood water from the reservoir tomorrow. As a result, the water level in Mahanadi and its distributaries will increase, for which a high alert has been issued to district collectors and superintendents of police of 13 downstream districts. We have more from our Sambalpur correspondent.
The water level of the Hirakud Reservoir is increasing steadily due to heavy rainfall in the upper catchment area of Mahanadi, and it stands at more than 610 feet, over 2 lakh cubic of flood water entering the reservoir, for which flood water will be released from the dam on tomorrow as per tradition. The decision on the number of gates to be opened for the release of flood water will be taken later on. Besides this, residents living downstream of the Hirakud Dam have been warned to take necessary precautions to protect themselves and their properties. People of downstream districts have been warned not to venture into the river for bathing or any other purpose during the period. The chief engineer of Hirakud Reservoir, Sushil Kumar Behera, says,
हीराकुद से पहले फ्लड वाटर रविवार 28 तारीख को सुबह 9 बजे रिलीज करेंगे, क्योंकि इनफ्लो आ रहा है 2 लाख से ज्यादा। कैलकुलेट किए हैं कि 28 तारीख को 616 पहुंच जाएगा, हम फ्लड वाटर रिलीज करेंगे। नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके सभी कलेक्टरों और एसपीओ को मैसेज दे दिए हैं, और प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया से लोगों को सतर्क कर चुके हैं कि इस समय में रविवार 28 तारीख को वो जब महान
During the discharge of flood water, arrangements have been made to play the sirens on the left spillway of the dam continuously for 2 minutes to alert people. For Parikrama, this is Alok Chandra Barik, Akashvani, Sambalpur.
केंद्र सरकार ने बिहार योजना के तहत 56 लाख दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना से छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग की उन महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत होने के सपने को उड़ान मिली है जो अपने गांव में ही कुछ करना चाहती हैं लेकिन साधन नहीं होने से लाचार थीं। बिहार योजना ने उनमें आत्मविश्वास भरा है। पेश है इस बारे में हमारे रायपुर संवाददाता विकल्प शुक्ला की यह रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आज भी आंगन और बाड़ी की परंपरा मौजूद है, और बिहान योजना ने गांव की इसी विशेषता को रोजगार से जोड़ा है। दंतेवाड़ा जिले की ग्रामीण बसाहटों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें सब्जी उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। गांव के हर घरों के आंगन और बाड़ियों में सब्जियां उगाने की परंपरा रही है ताकि ग्रामीणों को साग सब्जी के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। कच्चे आंगन और बाड़ियों में आदिवासी परिवार और किसान अपनी जरूरतों के लिहाज से मौसम के अनुरूप स्थानीय सब्जियां उगाते हैं। अब इन्हीं शाक वाटिका को महिला किसानों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत बहुउपयोगी कर आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाड़ियों में उगने वाले करेला, तोरई, बरबटी, सेम जैसी लता वाली सब्जियों के लिए मचान विधि फायदेमंद रहती है। इसमें लताओं के फलने फूलने के लिए रस्सी और तार के माध्यम से मचान बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि पौधे में आने वाली सब्जियां खराब नहीं होती हैं और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। इसकी एक और विशेषता यह है कि यह जैविक खेती है। दंतेवाड़ा जिले में बिहान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक सब्जियां और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 दीदियों की बाड़ियों में मचान विधि से सब्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से इन महिलाओं को आजीविका का नया स्रोत मिल गया है और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
National Institute of Nutrition, functioning under the Indian Council of Medical Research, is conducting diet and biomarker study in India. The objective of this survey is to examine correlations between dietary patterns and the prevalence of anemia, obesity and nutrient deficiencies among public. We have a report.
The survey will define food and nutrient adequacy by collecting individual dietary intake data of different age groups of people from 28 states and 8 union territories. The study's main purpose is to map the diet, nutrition and health status and provide correct estimate of anemia among urban and rural population using state-of-the-art techniques. This survey project has been rolled out in Puducherry recently. Health Department and Women and Child Development Department will conduct the survey, while the Vector Control Research Center at Puducherry would be the nodal office. Chief Minister Sri N. Rangasamy has inaugurated the survey and said that the survey would cover 50 urban wards and villages in the Union Territory. Sri Rangasamy added that the findings of the survey would shed light on the prevalence of undernutrition, other diet-linked health issues. He concluded that the survey would help in planning and executing government interventions. While contacting P. Muthumeena, Director of Women and Child Development Department Puducherry, said that 1,500 employees working in 855 Anganwadi centers would be involved in this survey. She further informed that the survey would seek to estimate the prevalence of anemia and micronutrient deficiency across various age groups in the society. The data collection process will be executed by a team comprising around 30 members, including medical officers, nutrition experts, dietitians, social workers, and anthropologists. The data gathered will encompass social, economic and demographic details, infant and young child feeding practices and anthropometric measurements. Blood samples will also be collected through mobile vans. Survey will be completed in the end of August month and the results would be submitted to the central government. This is Sivakumar, Deputy Director, News, Akashvani, Puducherry.
Supreme Court Judge Justice Suryakant has invited citizens to participate in the upcoming special Lok Adalat Week scheduled from 29th July to 3rd of August. Talking exclusively to Akashwani News, Justice Suryakant said that cases having elements of settlement, including matrimonial and property disputes, motor accident claims, land acquisition compensation, service and labour issues, would be taken up in the special Lok Adalat of the Supreme Court. He added that this initiative will also offer remote participation via video conferencing.
We are happy to announce that the Supreme Court of India is organizing a special Lok Adalat week from 29th July to 3rd August 2024, commemorating the 75th anniversary of the Supreme Court. To advance our commitment, this shall serve as an approachable forum for the citizens of our country to settle their disputes amicably. Cases having elements of settlement, including cases relating to matrimonial and property disputes, motor accident claims, land acquisition compensation, service and labor issues, or any other type of cases where parties agreed to settle voluntarily and which are pending before the Supreme Court would be taken up to facilitate speedy disposal. The technological advancement now allow us to conduct this special Lok Adalat via video conferencing, also offering a faster, transparent, cost-effective and accessible option. This innovation has significantly enhanced access to justice for those who might otherwise be unable to participate in Lok Adalats. Lok Adalat functions as a people's court, providing speedy justice, and participating in Lok Adalats offers several benefits as it leads to cost-effective, swift and easy settlement of pending disputes. The award of the Lok Adalats are final and executable. After the settlement of the dispute, the parties are eligible to claim the refund of the entire court fee so paid. Therefore, we can say that it creates a win-win situation for all. With this hope, I personally request all parties, counsel and advocates on record to avail the benefit of this mega settlement drive. Let's make this special drive a success through our collective efforts. Jai Hind.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 27th of July, 1889, British India Committee opened in London. Congress leaders like W.C. Banerjee and Dadabhai Naroji were of the opinion that Indians must gather support for the cause of independence in the British Parliament. In 1888, the Congress recruited an agency in Britain to publicise Indian issues to the British public. Headed by Digby, this organization arranged public lectures in England and began public distribution of pamphlets highlighting the issues in India.
In July 1889, a permanent British India Committee was established, with Wedderburn as chairman and Digby as secretary. The committee provided information about India, tailored to a British readership. The British committee published the journal India as an organ for the Congress's views. It also organized public meetings. The influence of its early works resulted in the Indian Councils Act 1892.
As a result of the efforts of the British committee, an Indian committee was established in the British Parliament in 1893 as a pressure group to influence policy directly. The British Committee of the Congress continued to function up to 1920, when it lost its support to the Congress due to a decline in moderatist membership and was abolished.
27th July is the birth anniversary of Kalpana Datta, who was born in 1913 in Chittagong, now in Bangladesh. She was inspired by the martyrdom of Khudiram Bose. The cause of patriotism made inroads in her life while she was in Chittagong.
This was further encouraged while she was pursuing her studies in the Bethune College, Kolkata. She was a part of the Chittagong Armory raid in 1930. Kalpana Datta was one of the members of Master Da Surya Sen's revolutionary group who carried forward the work of Pritilada Wadidar. She was also a member of Chhatri Sangha. She was a part of the Chittagong Armory raid and the first attempt at torching Pahartoli Club. During the second attempt made by herself and Master Da, the British were better prepared.
Kalpana Datta escaped at that point in time, but Master Da was finally captured in the year 1933. Later, after 3 months, she was arrested and sentenced to life. However, she was released 6 years later. Kalpana Datta graduated from the Calcutta University in 1940 and joined the Communist Party of India. She served as a relief worker during the 1942 Bengal famine and during the 1947 partition of Bengal. She wrote her autobiography titled Chottogram Ostragar Akramonkari Der Sriti Kotha, which has been translated into English also. She later joined the Indian Statistical Institute, where she worked until her retirement. Kalpana Datta breathed her last in Kolkata on the 8th of February 1995.
In today's defense news capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense, listen to the excerpts of the exclusive interview of DG Border Roads on the upcoming Shinkunla Tunnel, which was conducted by Prime Minister Shri Narendra Modi. The report has been fired by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
Prime Minister Shri Narendra Modi yesterday virtually initiated the first blast for the construction of Shinkunla Tunnel project in Ladakh, which is going to be the world's highest tunnel. In an exclusive interview, Director General Border Roads, Lieutenant General Raghu Srinivasan, shared details and the significance of the project. Listen in the excerpts.
मैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक हूं। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अद्वितीय सम्मान की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिंकुल्ला टनल की जो परियोजना है उसका फर्स्ट ब्लास्ट उनके कर कमलों से हुआ है। लद्दाख रीजन के लिए ट्रेडिशनली दो रास्ते हैं, एक NH1 जो श्रीनगर जोजिला से गुजरता हुआ लद्दाख को आता है, इसमें जोजिला टनल अभी बन रहा है। दूसरा जो मनाली से सरचू से होता हुआ तगलांगला और तीन अदर पासेस को पार करता हुआ फिर लद्दाख में आता है। जो तीसरी सड़क है इसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसी साल होली के दिन 25 मार्च को कनेक्टिविटी हासिल की है। इसी सड़क के ऊपर एक पास है, एक दर्रा है जो 16,700 फीट की ऊंचाई पर है, इसका नाम है शिंकुनला। ये शिंकुनला पास स्पीति लाहौल हिमाचल प्रदेश और जंस्कर वैली जो पदम में है इसके बीच में पड़ता है और ये साल में पूरे 4 से 5 महीने तक बर्फ से ढका रहता है जिसके कारण इस रास्ते को यूज नहीं किया जा सकता। इसको मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही आवश्यकता महसूस हुई कि हमें एक इसमें टनल बनाना पड़ेगा जिससे कि ऑल वेदर यानी हर मौसम में कनेक्टिविटी बहाल रहेगी। ये टनल 4.1 किलोमीटर लंबा होगा, ये ट्विन ट्यूब होगा यानी आने का एक और जाने का दूसरा ट्यूब होगा और इससे समय की बचत 30 मिनट और 4 किलोमीटर की कटौती होगी। और जब ये तीसरी सड़क शुरू हो जाएगी तो इससे सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट लद्दाख क्षेत्र है इसके लिए बहुत ही बढ़ावा मिलेगा और दूसरा जो आर्थिक विकास होगा स्पेशली जो ये हम पदम का जो एरिया है इसमें आर्थिक विकास होगा और हम देखेंगे कि आने वाले वर्षों में कितना लद्दाख रीजन प्रॉस्पेरिटी में जाएगा। जय हिंद।
फॉर परिक्रमा दिस इज आनंद सौरभ फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
और शगुन अब अपने श्रोताओं को खेल के मैदान की भी हलचल दे दी जाए।
राइट, अमिद थंडर क्लाउड्स एंड हैवी रेन द पेरिस ओलंपिक्स 2024 गॉट ऑफ टू अ स्टनिंग स्टार्ट लास्ट नाइट। द फोकस नाउ शिफ्ट्स टू द स्पोर्टिंग इवेंट्स टुडे। इंडिया बिगैन द कैंपेन ऑन डे वन ऑफ द गेम्स इन 7 इवेंट्स इंक्लूडिंग बैडमिंटन एंड हॉकी। In the men's singles sculls heats, Balraj Pawer finished 4th in Heat 1 and will be competing in the repechage round tomorrow, where he will get another opportunity to reach the quarterfinals. The top 3 rowers in each of the heats make it to the quarterfinals. And now, let's take you to our correspondent Savio, who is joining us live from Paris. Savio, hello.
Yeah, hi,
Yeah, hello Savio. What is the latest update from there, Savio?
Yeah, while it's tea time for you, it's lunch time for me. But the update is that in shooting, it's not been a very good day for India, with Ramita and Arjun finishing 6th and Vallarivan and Sandeep Singh finishing 12th. And Sarabjot Singh and Arjun Chima also failed to qualify. But right now, as we speak, Manu Bakker seems to be doing well in her round of shooting. But coming up shortly is the oldest Indian athlete in Paris, Rohan Bopanna, teaming up with Balaji, will be facing the French pair of Gay Mofi and Roger Vasselin. That will be something really worth watching. And in badminton, Lakshya Sen is taking on Kevin Corden in an hour from now in the men's singles. And the star-studded Indian duo of Ranki Reddy and Chirag Shetty will be crossing paths with Corvi and Labar of France. We have some Indian action in table tennis as well, where Harmit Desai is facing Jordan's Zayed Abo Yaman. And, of course, many Indian fans are waiting for the Indian hockey team to show up against New Zealand this evening. That's going to be a cracker of a match for sure. But those who love badminton will be surely waiting to watch Tanisha Krasto and Ashwini Ponnappa up against Kim and Pong of Korea in the women's doubles coming up later in the evening, somewhere around 8:30 Paris time. And finally, in boxing, it's Prithi who will be pitted against Vietnam's Thi Kim An Vo in the women's 54 kilos. So all in all, it's going to be an action-packed day or evening rather for India. Lots of Indians in action. And having said that, last night the Paris opening ceremony got off to an amazing start, and it was so nice to see a different type of opening ceremony, which was for the first time not held in a stadium.
Right. Thank you so much, Savio, for all the updates. So there is a lot in store for us to look forward to this evening. Also, Prime Minister Narendra Modi extended his best wishes to the Indian athletes and hoped they would inspire us with their exceptional performances. He also called every athlete as India's pride and hoped they would embody the true spirit of sportsmanship. Cricket legend Sachin Tendulkar said expectation is high on 117 Indian athletes and they will fulfill the dream of the country for sure.
श्रोताओं, अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि या जयंती है। इस कड़ी में सबसे पहले याद कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। डॉ अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। जुलाई 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इसरो लॉन्च प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है।
एंड टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग जॉन डाल्टन, इंग्लिश मीटियोरोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट, अ पायनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ही आल्सो रिसर्च्ड कलर ब्लाइंडनेस, ही आल्सो डेवलप्ड मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स।
और अब जिस शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं उन्हें भला कौन नहीं जानता। जी हम बात कर रहे हैं।
कितने आदमी थे सरदार? दो आदमी थे। दो आदमी, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए।
जी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता अमजद खान की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इनके द्वारा शोले फिल्म में अभिनीत किरदार गब्बर सिंह भारतीय सिनेमा के यादगार खलनायकों में से एक है।
ऑलराइट, यस। नाउ टुडे इट्स बर्थडे ऑफ केएस चित्रा, द प्लेबैक सिंगर एंड कर्नाटिक म्यूजिशियन। इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 47 इयर्स, शी हैज रिकॉर्डेड ओवर 25,000 प्लस सॉन्ग्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेजेस। शी वाज अवार्डेड पद्म भूषण इन 2021 एंड पद्मश्री इन 2005 फॉर हर वैल्युएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द इंडियन म्यूजिकल फ्रेटर्निटी। वेल, इट वाज रियली टफ टू पिक वन सॉन्ग फ्रॉम हर न्यूमरस ब्यूटिफुली संग मेलोडियस सॉन्ग्स, बट वी मेड दिस हार्ड चॉइस। So listen in.
भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज की भी आज पुण्यतिथि है। इन्होंने बनारस घराने की तबला बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। सन 1972 में भारत सरकार की ओर से लच्छू महाराज ने 27 देशों का दौरा किया। 1972 में ही केंद्र सरकार की ओर से इन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने का प्रस्ताव किया गया। इस मौके पर सुनते हैं उनके तबला वादन का ये अंश। और आज भारती मुखर्जी की जयंती है। ये भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका थी जिन्होंने अमरीका में कई पुरस्कार जीते। इन्होंने प्रवासियों के आंतरिक सांस्कृतिक टकराव पर कई कहानियां लिखी जिनमें से द मिडलमैन को अमरीका का शीर्ष साहित्यिक अवार्ड मिला।
Well, it's birthday of Pandit Vishnu Mohan Bhatt, the Indian Hindustani classical music instrumentalist who plays the Mohan Veena. He has attracted international attention by his perfect assimilation of Hawaiian guitar with sitar, sarod and veena technique by giving it an evolutionary design and shape and by adding 14 more strings, helping him to establish the instrument Mohan Veena to unbelievable heights. Listen to this soulful rendition of this evening rag, Gawati.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।